मुश्किल में हूँ सरकार, मैं मुश्किल में हूँ।
जब किसी को समझाना तो समझाने में नरमी जो है ये बहुत कारामद होती है। सख्ती से किसी को समझाने की मिसाल ऐसी है जैसे किसी बर्तन में आप कुछ भरना चाहते हैं, मसलन बर्तन में आप गिलास में दूध भरना चाहते हैं, लेकिन दूध भरने से पहले आपने उस पर उसमें सुराख कर लिया पेंदे में, तो अब अगर आप दूध भरेंगे पेंदे में सुराख करने के बाद तो वो दूध आपका जाया हो जाएगा। तो जब आप किसी को कन्वेंस कर रहे हैं, नेकी की दावत दे रहे हैं, अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गुनाह से बाज रखना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो ये तो दूध तो कुछ भी नहीं है। आप उसके अंदर जो कुछ भरना चाह रहे हैं वो यकीनन दूध से तो बदरजा बेहतर, लेकिन उसमें उस नेकी की दावत का दूध भरने से पहले ही आप उसको झाड़ दें कि यार इतने बड़े हुए तुमको अक्ल नहीं, अजान हो रही है तुम नमाज के लिए नहीं आते हो, यार बिल्कुल तुम तो बुद्धू हो, अब इतनी अक्ल नहीं है कि बात बात पर झूठ बोलते हो, अब तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल खराब हो गया, जहन्नम में जाओगे, गाने मत सुनो, फिल्में मत देखो, वरना चंबक तुम्हारी आंखों में आग भर दी जाए। अगर इस लहजे में आप किसी को समझाना चाहो तो क्या वो समझेगा? मेरे पास कई बार ऐसा हुआ कि बेचारे जो बड़े बूढ़े माहौल में आ जाते हैं दावत इस्लामी है, वो शिकायतें लाते कि मेरा बेटा लाइन पर नहीं, लेकिन बात होगा उस बेटे से उनका तर्ज गुफ्तगू ऐसा होता है कि जो मैंने अंदाजे गुफ्तगू आपको अभी नमूना तक पेश किया, गालिबन वो इस तरह उसको समझाते होंगे, तो वो मतलब यानी कि अब्बा की बातें मुन्ने की समझ में कहाँ है, तो जिद आए वो कुड़ता रहेगा अंदर से। यानी जब अब्बा की हालत ये है कि अब्बा जान अपने उस नौजवान बेटे को जुम्मे के दिन लाइन में लगाकर मेरे पास लाए हैं और मुझसे कह रहे हैं इसको समझाओ, ये फिल्में नहीं उतरता, फज्र में नहीं उठता, इसको समझाओ, माँ बाप को बहुत तंग करता है, इसको समझाओ, 10-20 आदमी और भी सुन रहे हैं और अब्बा मतलब मेरे सामने उसके लिए चहक रहे हैं, तो घर में क्या कुछ गुल अफशानी अपने उस नौजवान बेटे पर नहीं करते होंगे अब्बा। तो फिर अब उसके अब्बा ने जो सबके सामने जलील किया अपने जवान बेटे को, मेरे सामने उसको बेइज्जत किया, मेरे से बेचारा वैसे ही शर्माता है, उसको मेरे सामने बिल्कुल उसकी नाक काट के रख दी, अब तो मैं तो जो कहूंगा उसने तो हाँ मैं करनी, बिल्कुल वादा नमाज पढ़ूंगा, बिल्कुल वादा फिल्म नहीं देखूंगा, दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा, बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूँ, माँ बाप का अदब करूंगा, तो वो हो सकता है कि मुझे ये कहकर जान छोड़ा भी ले, मुझे तो सर हिला देते आपके दे। लेकिन पीछे से बहुत मुश्किल है कि वो मतलब अपने वादे पर कायम रहते, जो बाप बात बात पर टोक रहा है उसको झाड़ रहा है। मेरे आला हजरत हकीकत में ऐसे ऐसे वाकियात उनकी सूरत पे पढ़ते हैं कि ईमान ताज़ा हो जाता है, किस तरह आखिर पूरी दुनिया में इनका डंका वैसे ही तो नहीं बज गया, उसने अखलाक और नरमी अपनों के साथ जो उनकी होती थी, वाह वाह क्या बात है मदीने। मसलन एक बार एक सैयद साहब हाजिर हुए, उन्होंने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, अब जाहिर है कि सोने की अंगूठी मर्द के लिए हराम, और एक रिवायत के मुताबिक मर्द जो सोने की अंगूठी पहनेगा या सोने का जेवर पहनेगा तो वो मरने के बाद आग बन जाएगा। दीगर धातुओं की अंगूठियां भी जायज नहीं, सिवाय चांदी, यानी मर्द के लिए बात कर रहा हूँ, सिवाय मर्द को, औरत को तो सोने चांदी की अंगूठियां जायज है, सोने चांदी के वो जेवरात पहन सकती है औरत, लेकिन मर्द को चांदी की सिर्फ एक अंगूठी की इजाजत है। एक अंगूठी भी ऐसी कि जो 4.5 माचे से कम वजन हो। तो अब ये माशा और तोला गालिबन पुराना निजाम है, अब जो निजाम औजान है उसमें ग्राम चलता है, तो इसको आप तकरीबन 4.25 ग्राम समझ, बहरहाल ये 4.5 माशे पूरी नहीं होनी चाहिए, पूरी होगी तो गुनाहगार होगी, 4.5 माशे से कम वजन की हो, अब 4.25 माशे हो, 4 माशे हो, 3 हो, 2 हो, 4.5 माशे से कम, उसमें नग होना जरूरी है और नग का एक ही होना जरूरी है, नग का वजन कितना ही हो उसकी कोई कैद नहीं, चांदी का वजन 4.5 माशे से कम पूरे होगा तो भी गुनाहगार होंगे, ज्यादा वजन होगा तो भी गुनाहगार होंगे, 2-2 माशे की जैसे आप कहें कि मैंने 2 अंगूठियां पहन ली तो 4.5 माशे से कम वजन हुआ लेकिन गुनाहगार होंगे, किसी भी धातु का छल्ला पहना गुनाहगार होंगे, सिर्फ यानी चांदी का भी छल्ला नहीं पहन सकते। ये बेचारे भोले भाले लोग बोलते हैं मदीने से आया है, अजमेर शरीफ से आया, तो मदीने शरीफ वाले का हुक्म देखें क्या है, माजल्ला मदीने शरीफ में तो अब जगह जगह डिश एंटीना लगे हुए, बिल्कुल छूट में लोग फिल्में देखते हैं, जो हुज्जाज जाते हैं घरों में उनके टीवी रखे जाते हैं, का जो टाइम पास करता तो अभी हर चीज वहाँ थोड़ी जायज हो जाएगी, वहाँ तो दाढ़ी मुंडाते और भी माज अल्लाह बहुत कुछ अब वहाँ मतलब यानी के गुनाह होते हैं। तो मदीने शरीफ में होने से ये नहीं के मतलब यानी के वहाँ गुनाह जायज हो जाए या वहाँ के गुनाह का कोई आद आ गया तो यहाँ तो तबर्रुक बन जाए। माज अल्लाह तुम्हारा लिए के चांदी की एक अंगूठी मर्द पहन सकता है जिसका वजन 4.5 माचे से कम हो, एक नग उसमें शर्त है, एक नग से ज्यादा नग ना हो, बगैर नग की भी ना हो, अगर उसके तावीज भी बना हुआ नक्श तो भी नग जरूरी, बगैर नग के नक्श वाली भी नहीं पहन सकता, और वजन वही जरूरी है चांदी का 4.5 माचे से कम। सोने की, पीतल की, तांबे की, स्टील की, लोहे की, किसी भी धातु की नहीं पहन सकता। उसी तरह लॉकेट किसी भी धातु का, चांदी सोना कोई भी धातु उसका लॉकेट नहीं पहन सकता। वो चांदी की जायद अंगूठी पहनना भी अवामुन नास के लिए सुन्नत नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये कुछ सुन्नत है, ये सुन्नत होगी तो मैं जरूर अदा करता। अंगूठी सिर्फ उसके लिए सुन्नत है कि जो मतलब जिसको मोहर लगाने की हाजत हो, जैसे मुफ्ती है, काजी है, तो आजकल मुफ्तियों ने भी अंगूठी से मोहर लगाने की सुन्नत तो छोड़ा हुआ है, तो देखा नहीं मैंने ऐसा मुफ्ती के जो मोहर लगाता हो अंगूठी से। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी शरीर में मोहर थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कंधा था। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला की अंगूठी में जो मोहर थी उसमें कफा बिल मौत वाइज़ा कंधा था, नसीहत के लिए मौत काफी। बहरहाल ये अंगूठी से मोहर लगाना सुन्नत। अब जिसको मोहर लगाने की हाजत है उसके लिए अंगूठी सुन्नत, जिसको मोहर लगाने की हाजत नहीं है या वो मोहर नहीं लगाता उसके लिए सुन्नत नहीं है। पहनेगा तो गुनाहगार भी नहीं होगा, वो जायज अंगूठी पहनेगा तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन सवाब भी नहीं मिलेगा। सुन्नत समझ कर मत पहने, बाकी आपकी मर्जी है, सवाब नहीं मिलेगा। और उसका नगीना जो है ना हथेली की तरफ होना चाहिए, आप पहने भी तो उसका नगीना हथेली की तरफ रखा करें। तो बहरहाल वो शहजादे जो थे सैयदजादे उन्होंने सोने की अंगूठी पहनी हुई। अब एक बड़ा बुजुर्ग है आला तो बहुत बड़े बुजुर्ग, तो बड़े बुजुर्गों की आदत बाद औकात ये होती कि अपने अकीदतमंदों के घर बैठे, ये भी हो सकता है आप जैसे बड़े मियाँ बाद औकात वो गरजते हैं, ये भी तरीका एक तफहीम का होता है समझाने का, वो घबरा के उतार भी देगा, जेब में भी रख लेगा लेकिन पीछे जाकर फिर पहन लेगा। तो खैर आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने जो समझाने का अंदाज इख्तियार किया कुर्बान, ये उन्हीं का हिस्सा। उन सैयद साहब से फरमाया के शहजादे अगर आप कर्म फरमाएं और ये अंगूठी मुझे अता फरमा दे तो बड़ा कर्म है। क्या अब वो वक्त का मुजद्दिद और वलिय कामिल अंगूठी तलब कर रहा है तो कैसे जुर्रत कर सकता सामने वाला इनकार करने की। सैयद साहब ने बसद शौक हाजिर कर दी अंगूठी उतार की। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने उस सोने की अंगूठी से के वजन से ज्यादा सोने का जेवर बनवाया और मसला शरई भी लिख दिया, जो मैंने अभी अर्ज किया आपको अंगूठी कैसी होनी चाहिए वगैरह, तो मसला शरई भी लिख दिया और उस सैयद साहब के ज़ौजाए मोहतरमा के लिए वो सोने का जेवर जो उस अंगूठी से ज्यादा वजन का था वो मतलब भेज दिया कि ये सोना जो है ये औरत को पहनना चाहिए, तो ये मैं आपकी मतलब अहलिया को तोहफतन पेश करता हूँ और अंगूठी का मसला ये है, ये लिख दिया। कितना बेहतरीन और सैयदों का अदब भी इससे जाहिर हुआ कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने सैयदों का अदब बहुत करते थे। इसी तरह आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने के समझाने की एक और मिसाल मुलाहज़ा फरमाएं, हिकमत अमली से समझाने की मिसाल कुर्बान। एक सैयद साहब आला हज़रत की खिदमत में हाजिर होते थे और अपनी तंगदस्ती का रोना रोते रहते थे, पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता, गुजारा नहीं होता। आमतौर पर आजकल लोग यही कहते हैं घर में एक से एक आसाइश का सामान मौजूद नहीं होता, डेकोरेशन भी मौजूद होते हैं, बेहतरीन पलंग है, फिर भी बोलते पूरा नहीं, इनको बेचकर पहले खाओ फिर बात करो। खैर तो मैं कर रहा था कि वो सैयद साहब जो है वो अपनी तंग दस्ती का रोना रोते रहते जब भी तशरीफ लाते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत परवाने शमा रिसालत मुजद्दिद दीनो मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैह रहमतुर रहमान की हिकमत अमली देखिए। एक बार फरमाने लगे सैयद साहब एक मसला इरशाद फरमाइए, अगर शौहर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो वो बीवी उस शौहर के बेटे पर हलाल हो जाएगी, यानी माँ बेटे पर हलाल हो जाएगी। सैयद साहब ने तड़प कर अर्ज किया कि हुजूर ये कैसे हो सकता है, बीवी हलाल नहीं होगी। तो इरशाद फरमाया कि एक बार आपके जद्दे आला मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तजा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम तन्हाई में अपनी रीश मुबारक पर हाथ फेरा और फरमाया ऐ दुनिया किसी और को धोखा देना जा मैंने तुझे ऐसी तलाक दी जिसमें रिजअत नहीं, जिसमें रुजू ही नहीं। तो सैयद साहब देखा अपने आपके जद्द अमजद दुनिया को तलाक दे चुके, क्या भाई किसी वजह से दुनिया आपसे दूर भागती है और आपके लिए तंगदस्ती का मामला हो। सैयद साहब ने अर्ज किया कि हुजूर में सुलह के बाद भी वो सैयद साहब हाजिर होते रहे बारगाह आला हज़रत में, लेकिन कभी भी फिर उन्होंने तंगदस्ती की शिकायत नहीं समझ। तो ये हिकमत अमली नरमी है ना, और अगर इसी तरह उसको झाड़ के समझाया जाता कि मियां जब भी आते हो एक ही रोना रोते रहते हो, क्या मेरे पास पैसों का दरख्त है जो मैं तोड़ के आपको दे दूंगा, दुआ तो कर दी आपके लिए, क्या करूं, चलो इस तरह भी उसको खामोश कर देते, लेकिन जाहिर उनका दिल मुतमईन ना हो। तो हम लोगों का अंदाज जो है ना वो कुलाड़ा मारता है, हम लोग किसी को अगर खामोश करना भी होता तो डांट के कर, और हमारे असलाफ जो थे वो प्यार से इस तरह खामोश करते थे कि उनका दिल मुतमईन हो गया, क्योंकि जब तक अंदर से मुतमईन नहीं होगा आदमी उसकी जबान को हम खामोश कर भी देंगे तो बात नहीं होगी। तो मजा इसमें ही है कि आदमी सामने वाले का दिल जीते, दिल जीतने की बात, और दिल जीतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे आका मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम अपने माल के जरिए लोगों को खुश नहीं कर सकते, लिहाजा चंदा पेशानी और हुस्ने अखलाक के जरिए उन्हें खुश रखा करो। तो दिल जीतने का कितना प्यार, मोतबर आसान सस्ता नहीं, सस्ता भी मुफ्त का नुस्खा है कि किसी से हाथ जोड़कर आजी के साथ नरमी के साथ बड़े प्यार से आपने गुफ्तगू की, अगला आपसे मुतासिर हो गया, आपका गिरविदा हो गया। अगर माल से आपने मुतासिर करना क्या भी तो हो सकता है, वो मफाद की खातिर आपके पीछे लगा रहे कि और मिलेगा खुशामद करता रहे, आप उसका दिल ना जीत पाए, लेकिन हुस्ने अखलाक से आप जब दिल जीतेंगे तो गालिबन उसको आपसे कोई जाती मफाद भी ऐसा नहीं होगा, खुद ब खुद उसका दिल जो है वो आपकी तरफ माइल हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में इस तरह दिल जीतने का अंदाज नहीं पाया जाता।
मुश्किल में हूँ सरकार, मैं मुश्किल